پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. ہماری پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد. ہمارے پروگرام نشر ہو رہا ہے پاکستان میں ریڈیو پر براہ راست میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ urduvoa.com پر اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر, جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. پروگرام شروع کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بیرون ملک آباد پاکستانی اپنے آبائی وطن کے انتخابات میں اس پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ووٹ ڈال رہے ہیں جس پر 14 اکتوبر کو ضمنی انتخابات میں عمل درآمد ہوگا, جبکہ ان کی ووٹنگ کے لیے 15 روز تک ووٹنگ رجسٹر کے لیے 15 روز تک جاری رہنے والی رجسٹریشن کا سلسلہ جاری ہے جو 15 ستمبر کو ختم ہو جائے گا. یہ ووٹنگ کیسے ہوگی اور رجسٹریشن کا پروسیس کیسے انجام پا رہا ہے؟ کیا اس ووٹنگ کے نتائج پاکستان کے اندر ہونے والی ووٹنگ کے نتائج کا حصہ بن سکیں گے؟ اس سسٹم پر حزب اختلاف اور بیرون ملک پاکستانی کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ سسٹم بھی انتخابات کے بعد پاکستان میں کسی سیاسی تنازع کا باعث تو نہیں بن سکتا؟ یہ ہیں وہ موضوعات جن پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں پاکستان الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز قاسم ندیم. اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے لیے پاکستان میں قانونی جنگ لڑنے والی کنیٹیکٹ کی ڈاکٹر فرحت صدیقی, سپریم کورٹ پاکستان میں یہ مقدمہ لڑنے والے اور ان دنوں امریکہ کے دورے پر موجود سپریم کورٹ پاکستان کے بیرسٹر داؤد غزنوی, اور امریکہ کی سیٹل یونیورسٹی کے اسکول آف لا کے پروفیسر اور ڈائریکٹر سینٹر فار گلوبل جسٹس طیب محمود. اپنی رائے اور تبصرے پوسٹ کیجیے ہمارے فیس بک پر اور مفت کال پر ہمیں فون کیجیے اس نمبر پر 0800-777-89. گفتگو کا آغاز کریں گے ہم پاکستان الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز قاسم ندیم صاحب سے, جو اس وقت ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم قاسم ندیم صاحب. قاسم ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟
جی موجود ہوں.
جی السلام علیکم. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. تو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایسے میں کہ جب پاکستان کے عام انتخابات میں ٹیکنالوجی کے استعمال نے پہلے ہی انہیں متنازع بنا کر ایک بڑا سیاسی تنازع کھڑا کر دیا ہے, اور ایسے میں کہ جب امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ میں ہیکنگ اور مداخلت کے الزامات کی اعلیٰ پیمانے کی تفتیش کے باوجود اصل حقائق کا تعین نہیں کیا جا سکا ہے, تو پاکستان میں آن لائن ووٹنگ اور اس کے نتائج کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے تسلیم کیا جا سکے گا؟
دیکھیں, جہاں تک اس اوورسیز ووٹنگ کا تعلق ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے جب الیکٹورل ریفارم کمیٹی میں اس پہ لیجسلیشن ہو رہی تھی تو لیجسلیٹو باڈی جب اس پہ ورکنگ کر رہی تھی تو اس وقت الیکشن کمیشن چونکہ کوآرڈینیشن میں تھا, اور الیکشن کمیشن کے اس طرح کے تحفظات جن کا اظہار صرف آپ کے کوشچن کے اندر نہیں ہے, پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس وقت بھی ایک ٹاسک فورس بنائی گئی اور آئی وی ٹی ایف جو تھی اس نے ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جمع کروائی, اور اس میں یہ ساری چیزیں بہت ہیکنگ کے علاوہ ٹیکنیکل جتنی بھی اس کی ہنڈرنسز ہیں ان کے بارے میں رپورٹ دی گئی. لیکن جہاں تک اس آئی ووٹنگ کے پائلٹ پروجیکٹ کو کرنے کا تعلق ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پابند ہے اس لیے کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے جس کے تحت پاکستان کے الیکشن جو ہے وہ ریگولیٹ ہو رہے ہیں, اس میں یہ پروویژن ایڈ کی گئی ہے, سیکشن 94 موجود ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے بائی الیکشن کے دوران یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو ووٹ کا حق دے گا, اور اس کے لیے ایک نظام وضع کیا جائے گا, اور اس کو اس پائلٹ پروجیکٹ کو کرنے کے بعد الیکشن کمیشن ایک اپنی ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھے گا, اس رپورٹ کی روشنی میں فردر جو لیجسلیشن ہے اس پہ اوورسیز ووٹنگ پہ کی جائے گی. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی جو قانونی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرتے ہوئے اس اپرچونیٹی کو لوگوں کو پرووائڈ کر رہا ہے, اور اس میں یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپ کیا گیا ہے یہ نادرا کی طرف سے ڈیولپ کیا گیا ہے, اور اس سافٹ ویئر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی رن کیا گیا, اور اس پہ اگر آپ ججمنٹ دیکھیں تو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس نے اس سافٹ ویئر پہ اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا, और लिहाजा इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो रिजल्ट होगा इसका उस वक्त तक पाकिस्तान के मेन इलेक्शन का हिस्सा नहीं होगा जब तक इलेक्शन कमीशन को इस बात पे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि ये प्रोसेस बिल्कुल नीट और क्लीन था, इसमें किसी किस्म की कोई टेक्निकल कोई तकनीकी जो इंटरफेरेंस है वो नहीं हुई। तो इस तरह ये जो है कमीशन जो है इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोशिश की गई है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो जिसको प्रॉपरली यूज करने से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपना राइट ऑफ वोट इस्तेमाल कर सके। और हम ये एज ए इंस्टीट्यूशन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो उसको सेंसिबली इस्तेमाल करेंगे, और इसको अगर ये कामयाब होगा तो इन फ्यूचर इसको जो कंटिन्यू किया जाएगा और इस पे फर्दर लेजिस्लेशन होगी।
तो इसका मतलब
ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें मसाइल आ सकते हैं, तो उन जब तक ये पायलट प्रोजेक्ट होगा नहीं एक दफा उस वक्त तक फिर कोई असर्टेन करना मुश्किल होगा।
अच्छा, तो अभी ये इसका मतलब कि जाहिर है कि ये तजर्बाती तौर पर आप लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमने कोशिश की थी, आपने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया है आपकी वेबसाइट पर जाकर, तो हमसे तो वो खुली नहीं, और हमने बहुत से लोगों से पूछा, उनको भी नहीं पता कि वो कैसे खुल रही है, कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, और बहुत सारे पाकिस्तानियों को तो अभी पता ही नहीं है कि ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा, कैसे वो डालेंगे। उसे 15 दिन आपने दिए, इन 15 दिन में आप लोगों को कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करा लें, तो आप क्या समझते हैं कि इतनी उजलत में कितने पाकिस्तानी अपने रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, जबकि आपका सिस्टम भी अभी तक मुनासिब तरीके से काम नहीं कर रहा?
ये देखें, इसमें पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ वो पाकिस्तानी वोट ऑफ राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करेंगे जिनका ताल्लुक उन जिम्मी इलाकों से है जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, जिसके अंदर टोटल 37 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 11 नेशनल की हैं और 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबलीज की हैं। तो सिर्फ वो पाकिस्तानी इसको ट्राई करें जिनके वोट जो नाइकोप होल्डर हैं और जिनके वोट पाकिस्तानी इलेक्टोरल रोल के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। मैं ये पॉइंट आपके प्रोग्राम की वजह से बिल्कुल वाजे करूंगा कि इस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हम वोट दर्ज कर रहे हैं, इस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि हम लोगों से ऑप्शन ले रहे हैं कि वो ऑनलाइन वोटिंग जो है उसका ऑप्ट करेंगे। इनके वोट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उन इंतहाबी फरिश्तों के अंदर जिनकी बेस पे जनरल इलेक्शन हुए, और इन हलकों के अंदर इन लोगों के वोट हैं। जहां तक इसके खुलने का तलक है तो ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो है इस पे ये एक अलहदा वेबसाइट बनाई गई है जो ओवरसीज वोटिंग .gov.tk के नाम से है, www.overseaswoting.gov.tk।
तो इसकी पब्लिसिटी नहीं हुई ना, लोगों को पता ही नहीं है उनकी आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है, और इवन आपकी वेबसाइट पर जाकर ये हमने कोशिश की कि ये जो आपने नई वेबसाइट बनाई है उसका लगाकर हमने खोलने की भी कोशिश की, तो भी नहीं खुली वो नई वेबसाइट आपकी। तो क्या सिर्फ वही लोग खोल सकते हैं इसको जिनके नाम रजिस्टर्ड है, या हम बाकी पाकिस्तानी?
नहीं, मैं वही बात करने लगा हूं ना।
जी जी,
इस वेबसाइट पे जब जाएंगे तो उसकी सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट होगी कि वो आईडी जनरेट करेगा आदमी जो उस वेबसाइट को ओपन करेंगे।
वो तो ओपन ही नहीं हो रही ना जी, पहला मरला ओपन ही नहीं हो रही।
ये जो इसकी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है ना,
जी जी,
वो www.ecp.gov.tk, इस वेबसाइट पे हमारी पे ब्रोशर पड़े हुए हैं, पूरा मैनुअल पड़ा हुआ है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी
जी।
और इसके तमाम स्टेप जो है उस पंफलेट के अंदर दिए गए हैं कि किस तरह इसको आपने स्टेप वाइज इसके अंदर इन होना है।
जी बिल्कुल, नदीम साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और हमें भी यही मालूम हुआ था कि ये सारा सिलसिला बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन प्लीज आप एक बार दोबारा चेक जरूर करवा लीजिए अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से कि वो इसका जायजा लें, ताकि लोगों को बड़ी आसानी से वो वेबसाइट खोलने पे में आसानी हो, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करानी है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, कम से कम उनको इसका पता तो लगे ना कि सिस्टम क्या है। तो इस पर जरा गौर जरूर कीजिए।
नहीं, वो देखें, जब अगर वेबसाइट ओपन हो भी जाती है तो मैं पहली रिक्वायरमेंट जो बता रहा हूँ ना,
जी जी,
वो ये है कि वैलिड नाइकोप होल्डर होगा आदमी, वैलिड MRP होगा पाकिस्तानी उसके पास, ठीक है,
जी जी,
मशीन रीडेबल पासपोर्ट जो
जी
है
जी,
और उसका वैलिड ईमेल एड्रेस, ये तीन चीजें जो है ये इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जब वेबसाइट पे आईडी के लिए जाएगा तो जो ही नाइकोप एंटर वो करेगा तो वो नाइकोप एंटर होगा जो जिस नाइकोप के अगेंस्ट इन जिमनी हलकों के अंदर उस आदमी का वोट दर्ज होगा। अगर इन जिमनी हलकों के इलेक्शन वाले हलकों के अलावा कोई आदमी ट्राई करेगा तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं होगा।
अच्छा,
वो
अच्छा।
सिर्फ उसको आईडी जनरेट होगी, नाइकोप नंबर उस करेगा, रिसीव करेगा जिसको जिसका वोट वहां पे दर्ज होगा।
अच्छा।
जिसका वोट दर्ज नहीं होगा इसको वो आईडी जनरेट नहीं करेगा।
ठीक है,
तो ये थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन की जो हमारी वेबसाइट है उस पर ये ब्रोशर पड़े हुए हैं, वो गाइडेंस के लिए उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है।
ठीक है।
दूसरा, जहां तक एडवर्टाइजमेंट का तलक है, हमने एक प्रेस स्टेटमेंट जो है वो भी फेसबुक पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, वो हमने उर्दू में लिखी हुई है ताकि जो आदमी इंग्लिश नहीं समझते थे आसान जबान में उसको लिखने की कोशिश की गई है, और उसको तमाम जितने भी हमारे फॉरेन ऑफिस के थ्रू हमने सर्कुलेट करवाया तमाम कॉन्सुलेट को कि इसकी डिसेमिनेशन जो है वो लोगों तक की जाए।
अच्छा।
इसकी हमारी वेबसाइट पे, एक नादरा की वेबसाइट पे ये एक पंफलेट भी चल रहा है इसकी एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, फेसबुक पे सोशल मीडिया पे भी हमारा बैनर चल रहा है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, जाहिर है ये ऑनलाइन सिस्टम है, ये ऑनलाइन जितने भी फोरम है उस पे हमने इन चीजों को प्रोवाइड किया हुआ।
अच्छा, तो बहरहाल आपने ये कहा कि इसकी जो टेस्टिंग है वो, और पहली बार आपने कहा कि ऐसा हो रहा है, और हमने भी कहा कि पाकिस्तानी अमरीकी के अलावा बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी है वो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में हिस्सा लेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में क्या किसी और मुल्क ने भी कभी ऐसा किया कि अपने शहरियों को जो दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं उनसे कहा जाए कि जी आप अपने मुल्क इलेक्शन में हिस्सा इस तरह लें? ऐसी कोई मिसालें मौजूद हैं?
नहीं, मेरा ख्याल है एक आध कंट्री में कोई ऐसा होगा, क्योंकि मेरा इस बारे में उस तरह वसी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये इस तरह का सिस्टम है नहीं, क्योंकि इसको ला का हिस्सा बनाया गया और इन सारी चीजों को डिबेट करने के बाद जो इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी ने इसको कानून के अंदर एज ए पायलट प्रोजेक्ट रखा, ये दुनिया में बहुत कम आपको मिसाल नजर आएगी कि इस तरह का कोई सिस्टम हो, क्योंकि ये बड़ा एक तो अपना आपके अंदर का जो सिस्टम है मुल्क के अंदर का उसको इतना ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, फिर ये ऑनलाइन सिस्टम जो आप नेट के जरिए करेंगे उसमें ब्राइट चांसेस होते हैं कि इसमें मैनिपुलेशन जो है, आईटी मैनिपुलेशन जो है वो उसपे हदशात जो है बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये एज ए पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसको कोई मैंने शुरू में भी कहा कि इसको रिजल्ट का हिस्सा तब बनाया जाएगा जब हर हवाले से इलेक्टोरल जो प्रोटोकॉल है उसको भी देखा जाएगा कि कोई वायोलेशन तो नहीं हो रही है, दूसरा तकनीकी बुनियादी आईटी के हवाले से भी इन चीजों को देखा जाएगा जब ये प्रोसेस होगा।
अच्छा, तो अब ये हुआ कि जब लोगों ने वोट दे दिए तो वो अपने अपने घरों में बैठकर अपने कंप्यूटर खोलेंगे और उस दिन वोट डालेंगे, तो वोट किस तरह डालेंगे? आपने कहा कि उनको कोई कोड इशू होगा।
जी बिल्कुल, ऐसा ही है, जब आईडी जनरेट हो जाएगी, पहला स्टेप है उस वेबसाइट के अंदर वोट ओवरसीज वोटिंग की वेबसाइट के अंदर जाके जब आईडी जनरेट करेगा तो वो सक्सेसफुली अगर आईडी जनरेट हो जाती है तो उसके बाद फिर उसकी एलिजिबिलिटी और उसकी वेरिफिकेशन होगी सिस्टम के अंदर। तो वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ उन्होंने स्टेप रखे हुए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर ही, जब वो वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली हो जाएगी जो स्टेप दिए गए हैं उनके मुताबिक, तो सक्सेसफुल जो वेरिफिकेशन जिसकी हो जाएगी उसको वोटर पास कोड सिस्टम के जरिए दिया जाएगा, और वो जो वोटर पास कोड होगा वो इमीडिएटली इन दिनों में नहीं लिया जाएगा, जिस तरह आपने फरमाया कि 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक वोट की रजिस्ट्रेशन का टाइम है, तो इस टाइम के दौरान किसी को वोट पास कोड जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। जब वो सक्सेसफुली चला जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली उस ईमेल पे जो उसने प्रोवाइड किया है उस पे वो मैसेज मिल जाएगा वोटर को।
अच्छा।
तो ये जो वोटिंग पास कोड है ये जब रियल टाइम होगा इलेक्शन का पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, हमारा पोलिंग का टाइम जो होगा वो 8 बजे से 5 बजे तक है, तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि पोलिंग 8 बजे से शुरू होने से कबल एक दिन पहले देना है, 24 घंटे देना है, 20 घंटे देना है, 15 घंटे पहले उस वोटर को वो पास कोड मेल करना है, तो वो उस स्टेज पे जाके वो वोटर पास कोड जिसकी सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी उसको वो पास कोड जारी किया जाएगा, और रियल टाइम जब पोलिंग पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक शुरू होगा तो उस टाइम से 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है उस पास कोड को इस्तेमाल करते हुए इसी वेबसाइट के अंदर आदमी जाएगा और वहां पे वोटिंग का जो ऑप्शन आएगा, प्रोसीजर सारा दिया हुआ है जहाँ पे, तो वोटिंग के ऑप्शन में जाकर वो अपना रियल टाइम में वोट कास्ट करेगा,
वोट कास्ट करेगा। और उसके बाद जो अगला सिलसिला होगा कि उसकी कंपाइलेशन कैसे होगी, रिजल्ट कैसे मुरतब होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम पहले गुफ्तगू में शामिल करेंगे हमारे तैयब महमूद साहब, प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं सियाटल यूनिवर्सिटी के, उन्हें कहीं जाना है, तो आपसे गुफ्तगू का सिलसिला बाद में जोड़ेंगे, लेकिन पहले हम उनको शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन का प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी, गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान के ज़िमनी इंतखाबात में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट डालने के हक के बारे में, और उनके उस इंतखाबी प्रोसेस के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए अंजाम पाएगा। गुफ्तगू में अब शामिल करते हैं प्रोफेसर तैयब महमूद साहब को, जो प्रोफेसर हैं लॉ के सियाटल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ के, और डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर ग्लोबल जस्टिस के। अस्सलाम वालेकुम तैयब महमूद साहब।
अस्सलाम वालेकुम जी।
तैयब साहब, जल्दी से हमारे सुनने वालों को भी बताइए, और नदीम कासिम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, ये बताइए कि यहाँ पर पाकिस्तानी अमरीकी क्या सभी इसका वेलकम कर रहे हैं, या कुछ लोग जो हैं अपने खदशात का इजहार भी कर रहे हैं कि आया ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
इसको तनाजुर वही रखते हैं जो पहले बात हो रही थी। जिस कॉन्फिडेंस से इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन ने अभी बात की है, वो इंसान को हैरान ही कर देती है। यानी एस्यूम किया जा रहा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं उन सब को कंप्यूटर ईमेल्स की दस्तयाब हैं, एस्यूम किया जा रहा है कि उन सब को अंग्रेजी या उर्दू आती है, एस्यूम किया जा रहा है कि उनको तक जो फेसबुक पे वो जाके देखेंगे कि कहाँ क्या होना है। तो ये मैं समझता हूँ मज़ाक़ खेज है इस किस्म का कॉन्फिडेंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर करना, जिसके अंदर बुनियादी तौर पे बहुत खामियां होती हैं, शॉर्टकमिंग्स होती हैं। उसके अलावा ये कि हमारा इलेक्शन कमीशन अपने मुल्क में तो अभी तक इलेक्शन जो है शफाफ और तरीके से करा नहीं सका। अभी इलेक्शन से निकली है कौम, और आपको पता है कि क्या क्या मसले खड़े हुए जो एडमिट किए इलेक्शन कमीशन ने, केजी सिस्टम बैठ गया था, फॉर्म 45 नहीं पहुंचे, वगैरह वगैरह। तो चक झुमरा में तो इलेक्शन करवा नहीं सकते, तो वो यहाँ वाशिंगटन स्टेट में इलेक्शन करवाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। अलावा याद रहे कि ज्यादातर जो तारकीन वतन हैं वो कोई अमरीका और बरतानिया में नहीं रहते, ज्यादातर पाकिस्तान के तारकीन वतन जो है वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। ज्यादातर लोग नाखानदा हैं, ज्यादातर लोगों के पास कोई एक्सेस नहीं है ईमेल की और फेसबुक की और कंप्यूटरों की। तो ये खेल रचाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कुछ लोगों को खुश करने के लिए। तो उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन पहले अपने घर को ठीक करे, उसके बाद इस बात के का कोई तजिया करे कि कितने पाकिस्तानी जो बाहर मुल्कों में रहते हैं उनको अंग्रेजी, उर्दू, कंप्यूटर, फेसबुक, ईमेल, पासकोड और इस किस्म की सारी चीजों से दस्तरस है। दूसरा मसला यह है कि जैसे हालिया इंतखाबात में अमरीका में और यूरोप में कई जगह यह सवालिया निशान उठ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो सियासी प्रोसेस है खासतौर पर वोटिंग का, उसको हैक किया जा सकता है। अब दो साल से अमरीका में ये अब चल रही है इन्वेस्टिगेशन के आया यहाँ पे जो 2016 का इलेक्शन हुआ था वो किस हद तक मुख्तलिफ ताकतों ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के अंदर मुदाखलत की। तो ये चीजें हैं कि मैं नहीं समझता कि जब तक इन चीजों का खातिर खा कोई जवाब ना मिल जाए तो आगे बढ़ा जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत जल्दबाजी में चीज की जा रही है, ये बजा कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट कह के ये जो है कवर नहीं लिया जा सकता कि जब तक ये एश्योरेंस ना करवाई जाए कौम को कि ये फूल प्रूफ है, जब तक एश्योरेंस ना कराई जाए कौम को कि तमाम लोग तारकीन वतन जो बाहर रहते हैं उनको दस्तरस है उन तमाम मीन्स की जिनके थ्रू ये वोटिंग होनी है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर सवालिया निशान ज्यादा है और अभी तक जवाब तलब है।
तो कासिम नदीम साहब को जवाब देना, नदीम कासिम साहब आप जवाब देना चाहेंगे इनका, हमारे प्रोफेसर का, तैयब महमूद साहब का?
जी बिल्कुल, तैयब साहब की बात से मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया ये जेन्युइन काजेज हैं। और अगर देखा जाए तो मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरू में ये बात की थी कि जब इसको कानून का हिस्सा बनाया जा रहा था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है रिकॉर्ड की ये चीजें हैं कि ये सारे इलेक्टोरल जो प्रोटोकॉल हैं वो इलेक्शन कमीशन ने इन राइटिंग वहां पे दिए हुए हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है ये सबसे बड़ा मेजर एलिमेंट है। हम बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि पूरी दुनिया में कोई ईमेल या कोई लिटरेसी और ये इस तरह के जो इशू है लोगों के पास नहीं है, ये एक मखसूस तबका होगा, मखसूस क्लास होगी जो इसको इस्तेमाल कर रही होगी। मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी लेबरर हैं उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके पास होते ही नहीं है, ये सारी चीजें। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट की अगर रिकॉर्ड को देखें तो वहां पे भी इलेक्शन कमीशन के जो भी इस तरह के कंसर्न थे वो रखे गए, लेकिन इसके बावजूद इसको कानून का हिस्सा बनाया गया। तो जब ये एक्ट के अंदर है तो ये इलेक्शन कमीशन पे बाइंडिंग है, इलेक्शन कमीशन की ये आईनी कानूनी जिम्मेदारी है कि वो उस प्रोसेस को करेगा। अब वो किस तरह से करेगा, ये चूंकि सॉफ्टवेयर जो नादरा की तरफ से बनाया गया है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी के दौरान भी नादरा ने इसको कमिट किया कि हम ये करेंगे और इस तरह ये सॉफ्टवेयर, और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस सॉफ्टवेयर को चलाया गया और उसकी सेटिस्फेक्शन सुप्रीम कोर्ट की इसमें शामिल है। तो लिहाजा कानूनी रिक्वायरमेंट थी जो इलेक्शन कमीशन के लिए बाइंडिंग है उसके मुताबिक ये,
और ये आपका ये कहना है और आपकी जो पाकिस्तान की आवाम है और जो पाकिस्तानी अमरीकी या बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, आप समझते हैं कि आपकी इस दलील से वो मुतमईन हो जाएंगे और उन्हें ये इत्मीनान होगा कि इनके नतायज जो हैं वो मौजूदा जो इंतखाबी ज़िमनी इंतखाबात होंगे उनमें शामिल हत्तुलमका कोशिश की जाएगी कि ना किए जाएं, क्योंकि ये अभी ऐसा परफेक्ट सिस्टम नहीं आपने बनाया और ना कहा जा सकता है कि इसके नतायज एज इट इज़ शामिल हो जाएं। अच्छा, अब हम बेहद शुक्रिया तैयब महमूद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और गुफ्तगू की। कुछ और हमारे पास इतराजात हैं कुछ पाकिस्तानी अमरीकियों के भी, वो भी हम पेश करेंगे, लेकिन हम गुफ्तगू में अब शामिल करेंगे अपने पहले उन दो मेहमानों को दाऊद गजनवी और फरहत सिद्दीकी साहिबा को, जिन्होंने पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम हैं उनके वोट के हक के लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है। और सबसे पहले हम इन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और ख़ास तौर पर हमारी जो पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर हैं और बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर फरहत सिद्दीकी, ये हैं जिन्होंने ये पटिशन सबसे पहले या इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के हाई कोर्ट में भी जमा कराई और सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की कि पाकिस्तान के जो लोग बाहर के मुल्कों में आबाद हैं उनको पाकिस्तान में वोट का हक दिया जाना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम फरहत सिद्दीकी साहिबा
जी, अस्सलाम वालेकुम।
मुख्तसरन सुनाइए उस कानूनी जिद्दोजहद की तवील कहानी जो आपने, बहुत से पाकिस्तानियों ने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जीती और जिसकी बुनियाद पर अब पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का मौका मिल रहा है, अगरचे तजर्बाती बुनियाद पर ही सही।
जी 2013 में जब इलेक्शन से पहले जब सदर साहब ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया था कि इस ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक हासिल है, इसकी एक मैकेनिज्म बनाना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, एंड ही ऑर्डर्ड देम टू मेक दिस सिस्टम। वो नहीं हो सका टाइम की कमी की वजह से, दो या तीन महीने थे शायद उससे पहले, और उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक्सपायर हो गया। उसके बाद मैंने अपने बैरिस्टर दाऊद के थ्रू हमने एक पिटिशन फाइल की कि ये सिस्टम इतना आसानी, जैसे कि आपने सुना, देयर इज नॉट अ इजी आंसर टू दिस। पोस्टल बैलेट हो सकता है, आई वोटिंग हो सकती है, आप जाके अपने एम्बेसीज में जाके वोट डालें, बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन जब तक आप काम शुरू नहीं करेंगे आप एंड तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन आप सिर्फ ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है हर सिटीजन का, ओवरसीज सिटीजन्स का भी, कि हम वोट डालें। तो हम वी आर बीइंग डिसइनफ्रेंचाइज, हम लोगों को आपने मैकेनिज्म ही नहीं दे रहे, तो इस बात पे हमने पिटीशन फाइल की थी। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की थी, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दिया, उसके बाद फिर आई थिंक 2015 में हम सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद ये जो इन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी इश्यूज बताए कि ये इश्यूज हैं, और ये डिस्कशंस चलती रही, लेकिन आई थिंक कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि ये काम हमने करना है, और उनकी पूरी कोशिश थी कि ये काम हो जाए। लेकिन जनरल इलेक्शन में यही जो ओपन हेयरिंग में डिसीजंस हुए थे, ये सब लोगों ने अपनी उसकी सिक्योरिटी पे, प्राइवेसी पे, मैकेनिज्म इटसेल्फ पे जो टेक्निकल डिफिकल्टीज हो सकती हैं वो सब कहीं, लेकिन आखिर में यही फैसला हुआ कि जनरल इलेक्शंस में ये नहीं यूज होंगे। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप इज कि आप कोई भी सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, पोस्टल करें या एम्बेसी का करें या ये आई वोटिंग करें, पायलट प्रोजेक्ट्स तो करेंगे ही ना।
तो ये पायलट प्रोजेक्ट, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के आईनी वकील जो हैं बैरिस्टर दाऊद कज़नवी से, जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और इस मुहिम में भी शामिल हैं कि अवेयरनेस पैदा की जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग के राइट के बारे में, तो उनको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जी दाऊद कज़नवी साहब, बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का।
हाँ, अच्छा,
तो कुछ देर हो गई आपसे बात करने में, लेकिन आप देख रहे थे कहानी कैसे चल रही थी, तो आप ये बताइए कि फिर ये जद्दोजहद तवील तर क्यों होती चली गई, क्या क्या एतराजात बीच में आए और इस कानूनी क्या क्या कानूनी मुश्किलात आपको पेश आई इसको इम्प्लीमेंट कराने में आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के सिलसिले को?
देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो राइट टू वोट का जो कॉज है, ये 1992 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, ठीक है, और ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद मुकदमा है जो थर्ड टाइम सुप्रीम कोर्ट में आया 2015 में, ठीक है। अब इस इशू के अंदर काफी ज्यादा पोलिटिसाइजेशन भी है और इसके ठीक है टेक्निकल ग्लिचेस भी हैं, लेकिन आपने लॉन्गर टर्म में ये चीज देखनी है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठा है, क्या उनको आपने पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना। अगर आपने उनको पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ इसलिए बनाना है कि आपने उनसे चंदा इकट्ठा करना है या आपने उनसे चैरिटी इकट्ठी करनी है या उनके इमोशन यूज करने हैं, तो मेरी नजर में वो बेचारे जो पाकिस्तानी जो बच्चे अब आगे से ग्रो हो रहे हैं उनका कनेक्शन पाकिस्तान से कट रहा है, ठीक है। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल उसके रीजन बता रहा हूँ। वोट की तो बात अभी छोड़ें, पहली तो बात यह कि आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो मेंटेन रखें अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ। दूसरी बात यह है कि दुनिया के 115 ममालिक हैं जो ओवरसीज वोट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान किसी मुल्क से आगे निकल गया है, और पाकिस्तान का नादरा वो वाहिद अदारा है जो दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी सेल करता है, तारिक मलिक आज पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी सेल कर रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशन में वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं, वो लोग अपना बायोमेट्रिक कार्ड बना रहे हैं उस बंदे की टेक्नोलॉजी की वजह से। तो अगर आईटी की आपने इस्तेमाल नहीं रखनी तो अपने मुल्क से खत्म कर दें, आप चले जाएं अफगानिस्तान के जैसे मुल्क बन जाएं जिसमें आप कोई टेक्नोलॉजी का यूज ना करें। दूसरी बात यह है कि क्रिटिसाइज करने से पहले बेहतर यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट की थॉरली वो फाइनल ऑर्डर पढ़ें। पहले सफे पे सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है, थर्ड पार्टी असेसमेंट बटलर की ऑर्गेनाइजेशन ने की, जो दुनिया में वन ऑफ द रिनाउंड जो है ना सिक्योरिटी गैजेट्स ऑर्गेनाइजेशन है, बटलर ने ये एक रिपोर्ट के कंक्लूजन में कहा कि हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप इसको ट्राई ना करें, इंकरेजिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ड लिखे हैं कि बटलर की जो रिपोर्ट है वो इंकरेजिंग है, और सबसे बड़ी चीज तो वो ये आपको दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप वोट जरूर कास्ट करें, लेकिन अगर हम इसके अंदर कोई टेक्निकल ग्लिचेस देखेंगे हम उसको सेग्रीगेट कर देंगे। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि आप इस प्रोसेस को चलने भी नहीं दे रहे, बट व्हाई? ये तो एक
इसकी वजह वो कह रहे हैं ना कि अगर इसके असरात इंतखाबी नताइज पर पड़ते हैं और ऐसे सिस्टम के तहत पड़ते हैं जो कि फ्लॉ वाला है, तो फिर जाहिर एतराज तो होगा ना। तो
देखें, मैं आपको
आप ये कह दीजिए कि हमने ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कर रहे हैं और इसके नताइज बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे उन नताइज पर।
मैं आपको ये टेक्निकल एक बात बता दूं।
जी जी।
दुनिया में जब वोट का डेमोक्रेसी का पीरियड भी शुरू हुआ था ना, तो 5% लोगों को राइट टू वोट मिला था। ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में या एक रात में पूरी दुनिया एजुकेट हो जाएगी कि वोट किस तरह करना है, जब तक आप इस प्रोसेस को चलने नहीं देंगे। देखें, इलेक्शन कमीशन बाबर यकूब, आई रियली सल्यूट दिस पर्सन जिसने इतना ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में हमें सपोर्ट किया है, उस्मान मुबीन, ये वो दो लोग हैं जिनकी वजह से ये काम जो है पॉसिबल हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कंडक्ट किया है, ये जो साहब फरमा रहे थे कि जी इसमें बड़े ग्लिचेस थे, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेस्ट इलेक्शन कंडक्ट हुआ है। जितना अमेरिका में वोटर टर्न आउट होता है, इलेक्शन कमीशन ने उस चीज को साबित किया है, 10 करोड़ से ऊपर वोट पाकिस्तान में पड़ा है। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं कह रहा, हमारी इलेक्शन कमीशन और नादरा केपेबल है दुनिया के बेस्ट सॉफ्टवेयर भी चलाने के अंदर। असल में इशू ये है कि इस मैटर को पोलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है। सिंपल उन्होंने तरीका ये बता दिया है कि भाई, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा है कि अगर इसमें टेक्निकल ग्लिचेस होंगे तो हम उस वोट को सेपरेट कर देंगे, जो जनरल वोट काउंट होगा उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा।
लेकिन बात ये है कि जब लोग एतराज करते हैं उसको मानने वाला कौन है, जब उसे माना ही नहीं जाएगा एतराज करने वालों को, और कौन साबित करेगा कि वो एतराज सही है अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही इसकी जिम्मेदारी लेता है तो।
मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ
जी जी,
कि जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का जो आर्टिकल 94 है जिसके तहत ये पायलट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि जब ये हो जाएंगे वोट बाय इलेक्शंस के अंदर, उसकी एक रिपोर्ट होगी जिसके अंदर सीक्रेसी, एफिकेसी और इसकी जो कंसिडरेशन है वो पार्लियामेंट में चली जाएगी। वहां तक तो वेट कर लें थोड़ा सा, क्यों लोग। और दूसरी बात ये, मुझे थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन से थोड़ी सी शिकायत ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक मीडिया में इस चीज को इतना जो है ना प्रमोट नहीं किया। आप यकीन करें, मैं इंग्लैंड में था, अब मैं अमेरिका में हूँ, एवरीवेयर आई गो पीपल वॉन्ट टू वोट, लेकिन लोगों के पास उसका प्रोसीजर और उसकी चीजें समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है।
ये सवाल मैंने प्रोग्राम के शुरू में उठाया था कि इनकी जो वेबसाइट है वो भी नहीं खुल रही, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का लोगों को पता नहीं चल रहा, और लोगों को पता ही नहीं है कि ये हो रहे हैं और हो रहे हैं तो कब हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं। तो लेकिन हम इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस पर और भी प्रोग्राम करें। और नदीम कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू अभी करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जिसके बाद हमारे साथ जफर ताहिर साहब मौजूद हैं, वो भी एक अटर्नी हैं और यहाँ की पॉलिटिक्स में बड़ा हिस्सा लेते हैं, और उनको भी इस बारे में बहुत ज़्यादा इल्म है कि ये सिस्टम कैसे काम करते हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। उनको हमने अभी अभी अपने लाइन पर लिया है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। VOA उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में जी। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका की सियासत में नुमाया तौर पर आगे बढ़ने वाले जफर ताहिर, जो एक लॉयर भी हैं और बहुत सारे उमूर में बड़ी गहरा इल्म रखते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं। इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करने से पहले हम ज़रा हम शुक्रिया अदा कर लें अपने उन तमाम लोगों का जो फेसबुक पर इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं और इसको सराह भी रहे हैं। लियाकत अली खान हैं, हफीज़ुल्ला खान, ज़ियाउद्दीन, तैयब मुदस्सिर, ज़हीर गबोल, दाऊद चट्ठा, अमीर अहमद, फ़कीर गुलाम हैदर, ज़हीर गोबल, फ़कीर गुलाम अहमद संजरानी, शाह फहद, हनीफ खान, मलिक यूसुफ जानी, सादिकुल्ला, मियाँ जावेद इकबाल, मुशी खान, मन्नान पश्तून, मोहम्मद हुसैन अहमद खान, खालिद नवीद खान अयूब, नाइक बादशाह, रफाकत डैनियल, भट्ट फैसल, कुमार एबी रजाक, अनिल काकड़ा और बहुत सारे, और उमर बुजदार भी और कुमार एबी रजाक हमारे साथ, और के सुलहरिया भी हमारे साथ शामिल हैं। इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जफर ताहिर साहब, आप हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि ये जो इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात जहाँ पर होने वाले हैं और 14 अक्टूबर को हो रहे हैं और उसमें समंदर पार आबाद पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए हिस्सा ले रहे हैं, आप इस बारे में क्या समझते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, और आया इसको होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो इसको किस तरह से होना चाहिए।
यसमीन, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपकी, मैं जब कॉल आई तो मैं डायरेक्ट टेलीकास्ट देख रहा हूँ जो GHQ में तकरीब हो रही है पाकिस्तान में 6 सितंबर के लिहाज से, तो बेइंतहा उमदा तकरीब है और वाकई में ये लग रहा है कि जैसे एक नया पाकिस्तान वजूद में आया है। तमाम जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी مکتبہ فکر سے ہو، پولیٹیکل پارٹی سے ہو، ڈپارٹمنٹ سے، وہ سب وہاں موجود ہیں. عمران خان کی میں اس وقت تقریر دیکھ رہا تھا. دیکھیے جہاں تک یہ ووٹنگ کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ فرینچائز کے بغیر دنیا میں رہ رہے ہیں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جہاں پہ ان کے پاس ایک گیسٹ ورکر کا صرف ایک اسٹیٹس ہے. تو ان کے لیے تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ان کو ووٹنگ رائٹس دیے جائیں اور وہ ان ووٹنگ رائٹس کا استعمال کریں. اب وہ کس طریقے سے ووٹنگ رائٹس استعمال کریں، یہ میرے خیال سے جو پیچیدگیاں ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوئی ہیں کہ کیا وہ ان کانسٹیٹیوئنسیز میں ووٹ ڈالیں گے جہاں پہ وہ اوریجنلی ان کا قیام تھا، جہاں پہ ان کی ریزیڈنس ہے، یا پارلیمنٹ بعد میں کچھ ایسی چینجز لائے گی کہ کچھ مخصوص سیٹس ہوں جو کہ اسائنڈ ہوں ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں. جہاں تک دیکھیے تعلق ان ممالک کا ہے جن میں پاکستانی ہجرت کر کے آباد ہوئے ہیں، جہاں پہ ان کو شہریت ملی ہے، جہاں پہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے کسی شہریت کا، میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ جو اسکیم تھی ناڈرا کی، انہوں نے ایک نائیکاپ کا سسٹم لائے جس میں وہ پاکستانی جو اس وقت کسی اور ملک کے شہری ہیں مگر وہ اپنی اوریجن کو ٹریس کرتے ہیں پاکستان سے یا ان کے ماں باپ ٹریس کرتے ہیں، تو ان کو ایک خاص اسٹیٹس دیا تاکہ ان کو ٹریول میں پاکستان میں بزنس کنڈکٹ کرنے میں، وہاں رہنے میں آسانی ہو.
اچھا
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے. میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ پاکستانی جو امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور ایسے ممالک میں جہاں ان کے پاس پورے اختیارات موجود ہیں، مکمل اختیار موجود ہوں ان کے پاس، میرے خیال سے ان کا جو فوکس ہے وہ ووٹ ڈالنے پہ ہونا چاہیے اپنے لوکل الیکشنز میں. میں چاہوں گا کہ پاکستانی امریکن، مسلم امریکن، جو پاکستانی امریکن جو لیڈرشپ پوزیشن میں مسلم امریکنز کی، میں چاہوں گا کہ وہ پاکستانی پہلے یہاں کے الیکشن میں تو ووٹ ڈالیں. ہمارا جو ووٹ ڈالنے کا جو تناسب ہے امریکہ میں وہ بہت پور ہے. ایسے شہروں میں جہاں ہماری بڑی تعداد موجود ہے، شکاگو، لاس اینجلس، نیو یارک، ہیوسٹن، اس میں بھی بہت سارے پاکٹس ہیں جہاں ہمارا ووٹ ایک اثر ڈال سکتا ہے الیکشن کے ریزلٹس پہ، ہم ووٹ نہیں ڈالتے. تو یہ میرے خیال سے بڑی جذباتی چیز ہے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ شہریت جو ہے وہ بڑی مشکل سے آپ حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے کہ جب وہ مدینہ گئے تو انہوں نے مدینہ کے ایشوز کو فوقیت دی، وہاں کے ایشوز کو اپنایا، وہاں کے معاملات میں وہ شامل تھے، ان کی آخری جو ریسٹنگ پلیس ہے وہ بھی مدینہ ہے. تو یہ ہمارے لیے، میرے لیے تقریب یہ بہت بڑی مثال ہے. اور میں چونکہ امریکن پالیٹکس میں بڑے عرصے سے ہوں اور میں اس تگو دو میں لگا رہتا ہوں کہ پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ امریکہ کے ہر معاملے میں، چاہے وہ سڑکوں کی حالت ہو، چاہے وہ اسکولوں میں نصاب ہو، چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، اگر وہ یہاں کے الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے، یہاں کی سیاست میں حصہ لیں گے، ایک بار جب وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور وہاں پہ اگر ایشو آئے گا کہ کشمیر کا کیا ایشو ہے، یا پاکستان کو ایڈ کا کیا ایشو ہے، یا پاکستان سے تعلقات کا کیا ایشو ہے، اور وہ جب اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے تو لوگ ان کی بات سنیں گے اس لیے کہ وہ ٹیبل پہ موجود ہیں. اگر وہ ٹیبل پہ موجود ہی نہیں ہوں گے تو ان کی بات کہاں سے سنی جائے گی؟
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ وہیں ووٹ ڈالیں اور اپنے جو آبائی ملک سے ہے وہ اپنا ناطا توڑ لیں؟
نہیں، ناطا نہ توڑیں، بالکل نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان شہریوں کے لیے جن کا ایک زمانے میں پاکستان سے تعلق تھا یا پاکستان سے وابستگی رکھتے تھے یا رکھتے ہیں، ان کے لیے یا تو کوئی مخصوص سیٹس ہوں پارلیمنٹ میں جو ریپرزینٹ کر سکیں ان ایلیمنٹس کو جو کہ باہر ہیں، جو پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم میں ابھی کافی پیچیدگیاں ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ووٹنگ میں میرا پریفرنس یہ ہوگا کہ وہ شہری جو ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں جہاں ان کے پاس شہریت ہے، پہلے
اپنے ملک میں ووٹ ڈالیں، اپنے ملک
میں ووٹ ڈالیں تاکہ آپ اپنے آپ کو گنوا سکیں.
بالکل،
ہمارے سامنے ہمارے حضور کی مثال موجود ہے.
بالکل.
جہاں تک یہ تعلق کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناطا توڑ لیں، بالکل نہیں. میں تو ابھی حج کر کے آیا ہوں، وہاں کافی لوگوں سے میری بات ہوئی. میں پاکستان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں اور کروں گا، کرتا رہا ہوں، مگر میرا جو حق ہے وہ امریکہ پر بھی ہے. امریکہ آلسو ہیز اے رائٹ ٹو می.
بے شکریہ ظفر طاہر صاحب، اور آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ یہاں پاکستانی امریکی جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اس سسٹم کے بارے میں اور آپ کی اپنی رائے اس میں کیا ہے. ندیم قاسم صاحب کو ایک بار پھر پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ندیم قاسم صاحب, بات ہماری وہاں رک گئی تھی کہ لوگوں نے رجسٹریشن کرا لی, لوگوں نے ووٹ ڈال دیا, ان کو ان کے پاس نائکوب بھی ہے, انہوں نے وہ اپنی آئی ڈی بھی شامل کر دی, ان کو کوڈ بھی مل گیا, لیکن اس کے بعد اس کی جو کمپائل کیسے کیا جائے گا اور جب کمپائل کر دیا جائے گا تو پھر اس کا رزلٹ اناؤنس کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا اور کیسے وہ شامل ہوگا؟ ندیم قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ندیم قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. تو داؤد غزنوی صاحب, آپ کو ایک بار پھر ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں. آپ بتائیے, یہ جو ظفر طاہر نے کہا کہ جو تجاویز دیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان تجاویز سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں اور کس حد تک آپ اتفاق نہیں کرتے؟
دیکھیں, جو ظفر طاہر صاحب نے بات کی ہے, اٹ از پرفیکٹلی رائٹ. میں تو آپ کو بتاؤں کہ آج کے دنیا میں جو گلوبلائزیشن کی دنیا ہے, اس کے اندر ملٹیپل سٹیزن شپ, ایون ڈیول نیشنلٹی بھی ہونا, یہ ایک بلیسنگ ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مجھے ڈینمارک میں بھی جانا تھا, ہالینڈ میں بھی جانا تھا فار دس کاز, لیکن میرے پاس ویزا نہیں تھا, میں ویزا نہیں لے سکا موقع پہ, تو میں نہیں جا سکا. تو اگر یہی کام کوئی اوورسیز پاکستانی جس کے پاس باہر کی نیشنلٹی ہوتی وہ جا کے کر آتا. تو یہ موبلٹی آف ٹریولنگ ہے انسان کی, وہ گلوبلائزیشن میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ڈیول نیشنل ہو. لیکن میں دو ایسپیکٹ کے اوپر بات کرتا ہوں. میں ایک ایسپیکٹ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ملٹیپل سٹیزن ہوتے ہیں, یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے کہ پاکستانیوں کو 100% جو ہے وہ امریکہ کے الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے, بلکہ اس کی لیڈرشپ میں آنا چاہیے, کیونکہ جہاں پہ پالیسی میکنگ ہوتی ہے دنیا کے دوسرے ممالک کی, وہاں پہ پاکستانی بھی بیٹھا ہونا چاہیے. دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو رابطہ ہے پاکستانیوں کا پاکستان کے ساتھ, اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ایک رائٹ دیتا ہے, میں یہ پرفیکٹلی یہ سمجھتا ہوں میڈم کہ پاکستان میں جو ریئل تبدیلی ہے وہ لیڈرشپ سے آتی ہے. دیکھیں بھائی صاحب نے بات کی ابھی پہلے کہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے, کوئی نیا پاکستان کا کانسیپٹ ہے. وائی ڈیڈ ہی سے؟ کیونکہ لیڈرشپ چینج ہوئی ہے. تو کیوں نہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو اس میں بھی انگیج کریں کہ وہ لیڈرشپ چینج کرنے میں بھی اپنا رول پلے کریں. ان کا رول جو ہے وہ صرف پاکستان میں دعا کرنے کے لیے نہیں ہے یا چیریٹیبل آرگنائزیشنز کے لیے نہیں ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن ان کو اتنی اسپیس دے رہا ہے کہ یہ پاکستان کی ڈیسیجن میکنگ میں آئیں. اور دوسری بات جو ہے سب سے امپورٹنٹ جو میں آج کے دور میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو, کین یو امیجن, وہ امریکن نیشنل بھی ہے, اور پورا جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کی جو امریکہ کے جوز ہیں وہ چلاتے ہیں. کتنا زیادہ ان کا انفلوئنس ہے, کتنا زیادہ وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں اپنے ملک میں, اپنے اسرائیل میں, ووٹ کے اوپر بھی.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دوہری شہریت کے حق میں ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوہری شہریت رکھنے والوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے, اور اس کے لیے آپ نے جدوجہد کی.
میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں دوہری شہریت ایک بلیسنگ ہے. آپ کا بندہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے جہاں تک ایک نارمل پاکستانی نہیں پہنچ سکتا, تو آپ کیوں اس ایسٹ کو گوانا چاہتے ہیں؟
ٹھیک ہے, داؤد غزنوی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ندیم قاسم صاحب, الیکشن کمیشن کے اسپوکس پرسن ہیں اور ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز ہیں, ایک بار پھر ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم قاسم صاحب, بات ہماری گفتگو وہاں ختم ہوئی تھی کہ ووٹ ڈال دیا, ووٹ ڈالنے کے بعد رجسٹریشن ہو گئی, ووٹ ڈال دیا, اور ووٹ ڈالنے کے بعد اس کی کمپائلیشن کیسے ہوگی اور اس کے رزلٹ کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کس طرح ہوگی اور اس پر عمل درآمد کس طرح ہوگا, ان کے نتائج کا مختصراً یہ بھی ہمارے سننے والے تک پہنچا دیجیے.
جی, جب ووٹ آن لائن ووٹنگ کا سسٹم مکمل ہو جائے گا تو ریئل ٹائم ووٹنگ جو ہے اس میں الیکشن کمیشن کے پاس رزلٹ جو ہے وہ ہر کنسٹیچوئنسی وائز جنریٹ ہوں گے اس سافٹ ویئر کے ذریعے. تو جب ابتدائی طور پہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ غیر رقمی نتیجہ جو ہے اس کا اعلان کرتے ہیں, تو یہ جو رزلٹ ہیں یہ غیر رقمی نتیجہ جو ہے اس کا حصہ نہیں ہوں گے. یہ آفیشیل کنسالیڈیشن جو ہے وہ جو نارملی دو یا تین دن کے بعد ہوتی ہے, آفیشیل کنسالیڈیشن میں یہ جو رزلٹ ہے اس کنسٹیچوئنسی کا حصہ بنائے جائیں گے, اور اس پیریڈ کے دوران الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس چیز کا تعین کرے گا اور اس پہ ڈیسیژن لے گا کہ کیا ان کو ریئل جو الیکشنز ہیں ان رزلٹ کا حصہ بنانا ہے, یا اس پروسیس کے دوران یا اس کاسٹنگ کے دوران یا اس سافٹ ویئر میں کسی قسم کی کوئی گلیچز آئی ہیں اور ان کو اسرٹین کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن اس کا ڈیسیژن لے گا. اگر یہ پازیٹیو ہوا اور اس کو رزلٹ کا حصہ بنانا ہوا تو جو آفیشیل رزلٹ اناؤنس ہوں گے
वो कंसोलिडेशन के टाइम पे ये इसी तरह उस रिजल्ट का हिस्सा होंगे जिस तरह एक पोस्टल बैलेट की शक्ल में, जब पोस्टल बैलेट जो होते हैं जो मुल्क के अंदर इस्तेमाल होता है उसको रिजल्ट का हिस्सा बनाया जाता है।
तो ये है वो प्रोसेस। तो आप अब हमारे अभी उन्होंने भी निशानदेही की, दाऊद गजनवी साहब ने भी, और हमने भी अपने बहुत सारे सुनने वालों से भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी पूछा। तो आप इस तरफ कब तवज्जो देंगे कि आपकी ये जो वेबसाइट है जो आपने नई बनाई है और जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपने शुरू किया है, इसकी पब्लिसिटी और इसकी तशहीर को ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि अब वक्त तो बहुत कम रह गया है रजिस्ट्रेशन कराने का।
बिल्कुल, हम इसकी तरफ तवज्जो करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम पहले भी, मैंने पहले भी वाजे किया कि हमने ईसीपी की वेबसाइट और ये जो ओवरसीज वोटिंग की वेबसाइट है, इन दोनों पे उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ये पंफलेट पड़े हुए हैं और उस पर पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरह से वोट जो रजिस्ट्रेशन करनी है, पूरा वोट कास्ट करने तक का प्रोसेस जो है उसमें दिया गया है। फिर हमने उर्दू में एक डिटेल बना के अम्बेसीज को भी फॉरन ऑफिस के जरिए कहा कि इसको डिसमिनेशन किया जाए, सोशल मीडिया, फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे हमने इसकी पब्लिसिटी की हुई है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसकी पब्लिसिटी भी ऑनलाइन ही होगी और हम आगे जो आने वाले दिन है इसमें अब ये हमारे इल्म में चीजें आ रही हैं, तो इनको मजीद हम इस जो डिसमिनेशन है, पब्लिसिटी है, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस सिस्टम का हिस्सा बने और आके अपने वो रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 सितंबर तक उसको कम्प्लीट करवा लें।
जफर ताहिर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नदीम कासिम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं।
मैं ये देखिए, मैंने गजम्फर साहब की बात भी सुनी और नदीम साहब की भी। नदीम साहब अपना काम बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हैं और देखिए, इनको टास्क ये दिया गया है कि वो लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी कहलाते हैं उनके वोट को वो रजिस्टर करें और उनका वोट वो डलवाएं, किस तरीके से उनका वोट काउंट होगा। जो आपका सवाल था वो जहां तक मैं समझ पाया वो ये कि उनका वोट उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काउंट किया जाएगा जहां से उनकी रजिस्ट्रेशन थी। मगर एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, वोटिंग को खुदा रहा ड्यूअल नेशनैलिटी से कंफ्यूज ना करें। पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे हैं और राइटफुली सो, बिल्कुल वो सही कर रहे हैं कि वो उन इदारों की ये शर्त होती है कि आप ड्यूअल सिटीजन ना हो। देखिए, ये इसराइल के साथ जो अमेरिका का ड्यूअल सिटीजनशिप का मामला है ये बहुत पुराना है और ये इसलिए है कि बहुत सारे अमेरिकन ज्यूज जो थे वो इसराइल की आर्म फोर्सेज में सर्व करना चाह रहे थे तो वो ड्यूअल नेशनैलिटी लेते थे। अमेरिका का कानून क्लियर नहीं है ड्यूअल नेशनैलिटी के बारे में। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की क़यादत में इलेक्टेड लोग वही होने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के शहरी हैं। तो
और वो टैक्स देते हों। हमने बात की कुछ माहरीन और कुछ पाकिस्तानी अमरीकियों का ये भी एतराज है कि एक शिक ये जरूर शामिल होनी चाहिए वोट देने में कि वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम है वो पाकिस्तान में टैक्स भी देते हों, बेशक टैक्स ना दें चाहे जीरो टैक्स की जमा कराएं।
लेकिन मैं तो बात कानूनी कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी और मुल्क का हल्फ उठा लेते हैं और आप अपना अपना लीगल जो रابطہ है वो तोड़ देते हैं तो आपको एक वक्त में एक ही शहरियत रखनी चाहिए। ये मेरा अपना ज़ाती
पॉइंट है। अच्छा, फरहत सिद्दीकी,
कि इस पे भी देखिए, इस पे लीगल बात क्लियर नहीं है। ये इन्होंने साहब ने कहा कि पाकिस्तान का आईन अलाउ करता है, मगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज, कई इदारे राइटफुली सो वो रिक्वायर करते हैं कि आप जो हैं वो पाकिस्तान के शहरी और सिर्फ पाकिस्तान के शहरी हों,
तभी आप वहाँ के यानी नुमाइंदे बन सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ फरहत सिद्दीकी, डॉक्टर फरहत सिद्दीकी, जिन्होंने ये सारा जो जंग लड़ी है, कानूनी जंग समंदर पार आबाद पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिलाने के लिए, वो हमारे साथ बड़ी देर से खामोश हैं। माजरत खाएं कि उनको हम बहुत कम शामिल कर पा रहे हैं। फरहत सिद्दीकी, आप क्या ऐड करेंगी? आप भी तो बोलिए ना, आपने इतनी बड़ी जंग लड़ी, क्यों लड़ी? अगर ये ऐसे ही सारे इतराज़ात करने थे जैसे कि ज़फ़र ताहिर साहब आप कर रहे हैं और जैसे कि तैयब महमूद साहब ने किए, तो आप क्या कहेंगी इस वक्त? आप भी पाकिस्तानी अमरीकी हैं और बैरून मुल्क मुकीम हैं कनेटिकट में।
आई थिंक कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना कि कौन इलेक्ट हो सकता है और कौन इलेक्ट कर सकता है, इसमें फर्क है। ये रूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर आपने कोई ओहदा लेना है, आप सदर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, MNA हैं, MP हैं, आपको वहाँ का सोल सिटीजन होना जरूरी है। लेकिन जो वोट दे रहे हैं उनके लिए ऐसी कोई कदर नहीं है, तो जब नहीं है तो वो आपको मुझे वो राइट देना है। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि इस वजह से हम नहीं देना चाहते और उस वजह से हम नहीं देना चाहते। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, यू आर एब्रोगेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा। उसके लिए आपको जो भी इंसान का जो हक है वो उसने किसी ना किसी तरीके से हासिल करना है, जायज तरीके से, लेकिन उसको उसके लिए फाइट करना है। यही तो हम लोग पाकिस्तान के लोगों को जो वहाँ के वहाँ रह रहे हैं उनको समझा रहे हैं कि आपको अपने राइट के लिए फाइट करना है।
अच्छा, तो
ये मुझे समझ नहीं आ रही कि आप दोनों चीजों को ये लोग
असल में क्योंकि इसकी वजह वो बहुत सारी कबाहतें हैं ना जो इससे मुंसलिक हो गई हैं। क्योंकि एक इतराज़ ये भी किया जाता है कि समंदर पार आबाद जो पाकिस्तानी हैं वो जिस भी मुल्क में रह रहे हैं वहाँ की अपनी सियासत होती है, वहाँ मुख्तलिफ ऐसी लॉबिंग्स काम कर रही होती हैं जो उनके ओरिजिनल मुल्क के खिलाफ काम कर रही होती हैं, तो जो जब वो वोटिंग बाहर के मुल्कों में हो रही होती है तो वो उन पर असरअंदाज हो सकती हैं और उससे उनके जो ओरिजिनल मुल्क है, जो उनका आबाई मुल्क है, उन इलेक्शन के नतीजे पर वो असरअंदाज होकर उनके मुल्क में सिक्योरिटी का जो और इस्तेहकाम को भी खतरात लायक हो सकते हैं। इस पॉइंट पर आप क्या कहेंगी?
जो अब इसको मैं यही एग्जांपल दे सकती हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर वोटिंग होती है उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज नहीं होते हैं?
वो तो सही है, लेकिन वो तो अपने अंदर के मुल्क के शहरी हैं, लेकिन जो बैरूनी ताकतें पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क की लॉबिंग जो है वो दूसरे मुल्कों में काम कर रही होती हैं, तो उससे एक तरह से आप इसको तो आप क्या समझेंगी कि जफर ताहिर साहब आप बताइए कि मेरा ये पॉइंट किस हद तक।
देखिए मैं बताऊँ, ये इन्होंने एक बात शुरू में बिल्कुल ठीक कही कि इलेक्ट होना और वोट देने एक अलग अलग चीज है। मैं इस बात की लॉबिंग कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तानी जिन्होंने अब शहरियत अपना ली है किसी एक मुल्क की, अगर आपने उनको पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेशन देनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ सीट्स मुख्तस होनी चाहिए, असाइंड होनी चाहिए पार्लियामेंट में उन लोगों में, जिस तरह टेक्नोक्रेट की सीट्स हैं जो रिप्रेजेंट करें उन लोगों के इंटरेस्ट को जो ओरिजिनली पाकिस्तान के थे। इसको वोटिंग राइट्स को ड्यूअल नेशनैलिटी को प्लीज कंफ्यूज ना करें। मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों की राय लेना और उन लोगों की राय लेना जो एक जमाने में पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वहां से रिश्ता रखना चाहते हैं, उनकी राय लेना जरूरी है ताकि पाकिस्तान में जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उनको पता चले कि ओवरसीज पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। हाँ। और उनको अट्रैक्ट करना, उनके टैलेंट को अट्रैक्ट करना, उनके इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, तो ये दो अलग चीजें हैं जिसको हम जज्बात में आके गुदमुट कर रहे हैं। इसमें लीगल पेचीदगियां हैं जिनको रिजॉल्व करना जरूरी है। पाकिस्तान का आईन हो सकता है इजाजत दे, हो सकता है कि दूसरे ममालिक के आईन इजाजत ना दे।
दाऊद गजनवी आप जल्दी से इसको बताइए कि जो तजावीज जफर ताहिर साहब ने पेश की उनके जवाब में आप क्या कहेंगे?
देखें सबसे पहले चीज तो यही है कि जफर साहब के ठीक है, उनके एक लीगल पॉइंट्स हैं एंड आई डू रिस्पेक्ट दैट। और कोई भी कंट्री अगर किसी इशू में खामोश होती है तो लीगली इस चीज को यही समझा जाता है कि ये उनकी एक्सेप्टेंस है, ठीक है। दूसरी ये चीज है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान का मेरी नजर में एक एसेट है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनली वो एसेट जिस तरह सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो सकता है मैं उस रास्ते को हमेशा फॉलो भी करूंगा और लोगों को भी इसकी कैंपेन करूंगा।
अच्छा,
ठीक है। आखिर में सिर्फ यही एक चीज है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं ये बाय इलेक्शन में जिनका वोट बनता है वो उसको कास्ट करें ताकि हम इंशाल्लाह ताला इनको प्रॉपर्ली जो है ना नेक्स्ट टाइम।
नदीम कासिम साहब आप आखिर में अपने हमारे जो पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को उनसे कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिए उस ज़मीनी इंतखाबों के हवाले से। नदीम कासिम साहब हमारे साथ मौजूद।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि एक तो ये है कि पब्लिसिटी पे बात हो रही है कि लोगों को ज्यादा पता नहीं चल रहा, तो आपके मैसेज के तौसर से मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि हमने इसकी डिसेमिनेशन पहले भी की है, अब मजीद इसको इम्प्रूव करते हैं, हमारी वेबसाइट पे ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। दूसरा ये है कि चूंकि ये एक बड़ी दहरीना एफर्ट के बाद लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको जितना भी पार्टिसिपेट करेंगे, जितना इम्प्रूव इसमें लोग शामिल होंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे, तो इसकी बेस पे चूंकि आगे एक ये पायलट प्रोजेक्ट है, एक रिपोर्ट मरतब होनी है, तो इसको जितना कामयाब करवाएंगे, इसको सेंसिबली यूज करेंगे तो ये इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और हम ये एज ए इलेक्शन कमीशन जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इसको अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे और इस सिस्टम को आगे चलाने के लिए इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड होके मदद करेंगे
तो इसका...
ये अपनी मदद खुद कर रहे हैं लोग।
अच्छा।
क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है अगर इस सिस्टम के अंदर इस प्रोसेस में जितनी कम हिंड्रेंसेस होगी जितनी कम ग्लिचेस होगी
उतना ही अच्छा
ये फूल प्रूफ होगा इतना ही उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा।
वेबसाइट का जल्दी से वेबसाइट का लिंक बता दीजिए, वेबसाइट का लिंक एक बार फिर बता दीजिए।
जी वेबसाइट का जो लिंक है www.overseasvoting.gov.pk ये वेबसाइट है और इंस्ट्रक्शन के लिए जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है
वहाँ
www.ecp.gov.pk।
बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ। आज हमने बात की बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के हक पर और उस वोटिंग के सिलसिले पर जिसके रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी हो चुका है। हमारे साथ थे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल कासिम नदीम, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के लिए पाकिस्तान में जंग लड़ने वाली कानूनी जंग लड़ने वाली कनेटिकट की डॉक्टर फरज सिद्दीक और बैरिस्टर दाऊद गजनवी और सिएटल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ के प्रोफेसर डायरेक्टर सेंटर फॉर ग्लोबल जस्टिस सैयद महमूद और जफर ताहिर मारूफ लॉयर यहाँ के कैलिफोर्निया के यास्मीन जमील को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। हमारे प्रोड्यूसर थी सादिया सर।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने बुध को पीटीआई से मुंसलिक वजीर दिफा परवेज खटक समेत कई सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारों के खिलाफ बदउनवानी के केसेस दाखिल किए जिसमें उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने अख्तियारात को बेजा इस्तेमाल करने के अलावा अपनी आमदनी से ज़्यादा असासे जमा किए। इसके अलावा जुमेरात को FIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जरदारी ग्रुप से मुंसलिक दो कंपनियों की भी शिनाख्त हुई है जिन्होंने अरबों डॉलर्स का गबन किया। अंग्रेज़ी अखबार एक्सप्रेस न्यूज़ में FIA के रिपोर्टर आदिल जवाद कहते हैं कि PTI सरकार ने अपने अहलकारों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की हैं इससे एक अच्छी रिवायत शुरू हुई है।
रिसेंटली PTI की जानिब से ये दो वाकयात हुए हैं, एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत आने के बाद एक बाबर अवान जिनके मुशीर थे फेडरल गवर्नमेंट में उनके खिलाफ एक नैब ने इंक्वायरी शुरू की थी, उसके बाद उन्हें मुस्ताफी होना पड़ा। इसी तरह नाम आया परवेज खटक का जो कि वजीर दिफा भी हैं और बहुत ही साबिक वजीर आला KP हैं और बहुत मजबूत हैसियत है उनकी PTI में और वो इमरान खान के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं। तो अब आया ये देखना है कि क्या इनको भी इसी तरह का बाबर अवान जैसे उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नायब इस वक्त एहतसाब का एक अमल शुरू हुआ था जो सियासतदानों के खिलाफ और उनकी करप्शन को सामने लाने जैसे नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी इस वक्त जेल में मौजूद है उसमें पीपल्स पार्टी के बाद अब पाकिस्तान तहरीके जो हुक्मरान जमात है उसके सियासी रहनुमाओं को भी घेरा तंग किया जा रहा है जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वाकई एहतसाब का अमल अक्रॉस द बोर्ड किया जा रहा है।
उनका कहना था कि नैब की कार्रवाइयों के बाद सियासी पार्टियों में खदशात पैदा हुए हैं कि उनके खिलाफ केसेस सियासी बुनियादों पर दायर किए जा रहे हैं।
देखें जी ये सियासी पार्टियां तो जाहिर है इसको एक सियासी बुनियादों पर किए जाने वाले फैसले ही करार देती हैं, खासतौर पर जैसे हुक्मरान एक मुस्लिम लीग नून की जानिब से यही कहा जाता है कि उनके करप्शन साबित नहीं हुई। इसी तरह पीपल्स पार्टी की जानिब से जो आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर और उनके दीगर अहले खाना के खिलाफ भी FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक तहकीकात कर रही है, उसमें एक मुकदमे का भी इंतजार हो चुका है और वो लोग मुलजिम हैं और जमानतों पर हैं और उस केस की भी समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट में। आसिफ जरदारी साहब नवाज शरीफ को मुर्दा ज़लाम ठहराते हैं और वो कहते हैं कि ये सियासी बुनियादों पर की जाने वाली कार्रवाई है।
लेकिन वो कहते हैं कि अवाम में अभी एक उम्मीद जागी है कि तमाम तबकात का एहतसाब होगा चाहे वो कितने भी ताकतवर हों।
जी पब्लिक में आम पब्लिक तो जाहिर है जो मुल्क की सूरत हाल है और पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसके बाद लोग जाहिर है सियासतदानों को ही सबसे ज़्यादा कसूरवार समझते हैं और उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई को वो बिल्कुल इसी नज़र से देखते हैं कि ये शायद मुल्क में बेहतरी की जानिब कोई कदम है।
ये थे कराची में सहाफ़ी आदिल जवाद। दूसरी तरफ हुकूमत में शफाफियत के लिए काम करने वाला एक गैर सरकारी इदारा पिलडाट के सरबरा अहमद बिलाल कहते हैं कि हुकूमत वक्त के अहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ साथ नैब के दायरे को वसी करने की जरूरत है।
अगर क्रॉस द बोर्ड से मुराद ये है कि मुल्क के अंदर किसी भी तबके या किसी भी سیکشن آف سوسائٹی کو برابر کے بنیاد پہ اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا ہو تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو نیب کا قانون ہے اس میں ججز اور فوجی افسران اس سے مستثنا ہے. ان کا خیال ہے کہ ان کے تو اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے کچھ پروسیجرز ہیں, وہ اس کو ایڈیکویٹلی فیس کر لیتے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے, جن میں بھی شامل ہوں, کہ ایسا نہیں ہے, ان کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کے پورے پروسیس میں شامل ہونا چاہیے اکراس دی بورڈ.
اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ حکومت وقت کا اپنے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنا بڑا غیر معمولی ہے.
یہ بہت مثبت ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم بھی ہے. ماضی میں بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اگر آپ کا کیس ریفرنس کے لیول پہ پہنچ جائے تو اس موقع پہ کچھ لوگ استعفیٰ دے دیں, کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ریفرنس کا تو مطلب ہے ابھی عدالتی کارروائی چلے گی, تو عدالتی کارروائی میں جب تک کسی کو مجرم قرار نہ دیا جائے اس وقت تک وہ کیوں استعفیٰ دے, کوئی قانون کی کمپلشن نہیں ہے. لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اگر عدالتی کارروائی شروع ہوگی تو وہ شخص اس عدالتی کارروائی کو کسی طرح سے انفلوئنس کر سکتا ہے اگر وہ حکومت میں ہو. تو یہ پی ٹی آئی کا ماضی میں یہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے.
یہ تھے غیر سرکاری ادارہ پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال, وائس آف امریکہ.